ॐ नमो भगवते नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक नंबर 22। कल आप लोग कथा सुन चुके हैं, कथा वहां पहुंची हुई है जहां प्रहलाद जी के चारों भाइयों का और उनकी एक बहन का वंश का वर्णन हो चुका है। इसके बाद अब कथा आगे बढ़ाते हुए कथा वहां पहुंची हुई है जहां अब सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न किस बात पर उठा रहे हैं? ले जाओ इसको, रख लो। हरे कृष्ण। प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति आने के बाद दैत्यों और देवताओं के पिता एक ही होने के कारण और माताएं दो होने के कारण इस प्रकार की स्थितियां आए, तो यह वो बताइए कि दीति के जो पुत्र जो मुख्य रूप से दानों में सर्वश्रेष्ठ थे तो उनको इंद्र के ही कारण, इंद्र का ही पक्ष लेकर के भगवान विष्णु ने दीति के इन दोनों पुत्रों का वध किया। तो वध किया तो वध करने के स्थिति से मां दीति जो है अब उस स्थिति को प्राप्त कर रही है कि जब इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान विष्णु ने ही मेरे पुत्रों का वध किया, तो मां है दीति लेकिन उनके मन में यह भाव आ चुका कि अब मैं ये अपने को, एक शब्द प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने को जो मतलब गर्व से फुलित हो चुका है इंद्र और अपने को अभिमान जनित होकर के अपनी रक्षा के लिए मेरे पुत्रों का वध कराया, तो अब मैं मन में ऐसी बात ठानते हूं कि अब इसको वध करने का मैं कुछ उपाय सोचूंगी। तब सुखदेव गोस्वामी जो प्रश्न राजा परीक्षित उठाए हैं श्लोक नंबर 20 से लेकर के 20-21 दोनों प्रश्न श्लोक है। हम लोग पहले श्लोक उच्चारण कर लें, नहीं तो भूमिका बताने में ही लेट हो जाता है। श्लोक का उच्चारण कर लें, उसके बाद कथा प्रसंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे बोर्ड के ऊपर श्लोक नंबर 22 लिखा हुआ है। श्री सुत उवाच तद विष्णुरात सबाद राजडे युवचो निशम्यार्दितमल्पवर्थवत् सभाजयन संद्रिवितेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। श्रीसुत उवाच तं विष्णुरात्तस्य स बादरायणी वचो निशम्यादितमल्पार्थवत् सभाजयन संद्रिवितेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। तविष्णुरातस्य सवादरायणी वचो निशम्यादितयल्पार्थवत् सभाजयन संद्रिवितेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शना। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। श्री सुत उवाच। श्री सुत गोस्वामी ने कहा तत् वे विष्णुरातस्य महाराज परीक्षित का सह उस वादरायणे सुखदेव गोस्वामी ने वचः शब्द निशम्य सुनकर आदृतम आदरपूर्ण अल्पम संक्षिप्त अर्थवत् सप्रयोजन सभाजयन सन प्रशंसा करते हुए निवृतेन चेतसा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जगा उत्तर दिया। सत्रायण हे सौनक सर्वदर्शन सर्वज्ञाता सर्वदर्शी। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि हे साधु सौनक महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके यहां प्रयत्नों लिखा हुआ है लेकिन प्रश्नों होना चाहिए क्योंकि प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं राजा परीक्षित के प्रश्नों का। सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। अब भगवान के भक्तों की प्रशंसा इन श्लोकों में भी हुई है परोक्ष रूप से। देखा जाता है कि असुर वंश में भी पैदा हुए कुछ भक्त ऐसे एक निष्ठा के साथ समर्पण के साथ भक्ति किए कि असुर में पैदा होने के बाद भी बड़े बड़े शक्तियों को इन्होंने प्राप्त किया। यहां देखा जाता है बड़ासुर का भी थोड़ा सा संकेत किया गया है श्लोक के अंदर कि उतनी एक निश्चितता के साथ उसने भक्ति की थी कि आज तक उसके नगर की रक्षा भगवान शिव कर रहे हैं। और वही प्रसंग संकेत रूप में यहां भी बलि महाराज का भी संक्षिप्त रूप में जो अल्पम शब्द आया है उसमें बता दिया गया है कि संकेत तो कर दिया गया है कि कथा विस्तार रूप से बलि और वामन देव की होने वाली है, प्रसंग में वो आने वाला है, लेकिन परोक्ष रूप से यहां यह वर्णन बताया जा रहा है कि वंश कैसा भी हो लेकिन भक्ति महत्व रखती है। भगवान शिव आज भी अपने भक्त बाणासुर की नगर की रक्षा कर रहे हैं, पहरादार बने हुए हैं। और वही चीज अगर अष्टम स्कंद पढ़ेंगे तो सूतल लोक में भगवान वामन देव ने बलि को भेज दिया लेकिन स्वयं सिक्योरिटी का काम वहां कर रहे हैं भगवान, वहां भी पहरेदार बने हुए हैं। तो वंश चाहे जैसा भी हो, हम लोग किसी भी परिवार में जन्मे हो, लेकिन भक्ति महत्व रखती है, भक्ति से सारी स्थितियां अनुकूल हो जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं अनुकूल हो जाती है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, क्योंकि इन श्लोकों में पढ़ने के बाद यह पता चलता है, और यही प्रसंग और यही प्रश्न उठाएंगे सुखदेव गोस्वामी कि दीति से पैदा होने के बावजूद भी ये असुर तो आसुरी प्रवृत्ति वाले, मतलब मां से पैदा हुए, लेकिन इनकी विचारधाराएं अलग कैसे हो गई? ऐसे इस प्रश्न का सांकेतिक रूप से उत्तर तो कल प्रभु जी ने दिया भी था कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण रखता है। इधर तुमा दीति इतनी कठिन तपस्या की, उसका भी प्रभाव था, और इधर इंद्र की ईर्ष्या की जो भावना थी इसका भी प्रयास था। तो इस प्रयास से ईर्ष्या के बावजूद भी इंद्र ने भी अपनी मां का इतना सेवा किया, मौसी कह लीजिए, मां तो नहीं मौसी, कि इन्होंने इतना दृढ़ता के साथ सेवा किया, लेकिन भाव भले इनका गलत था कि हम इनको हमें मारने वाले उत्पन्न होने वाले हैं तो इनको हम मार देंगे, भावनाएं गलती थी, लेकिन प्रयास दोनों का था। इस प्रसंग से मेन आशय यह निकलता है मुख्य रूप से कि अगर कोई व्रत करता है, तपस्या करता है, कठोरता से किसी चीज का नियम पालन करता है, तो शुरू की स्थितियां जो हमारी गलत हों वो धीरे धीरे उन व्रत के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से उसके अंदर बदलाव आ जाता है। एक टीकाकार ने लिखा है कि हम अपनी भाग्य रेखा के कर्मों को हम बदल सकते हैं भक्ति के बल पे। पूर्ण रूप से जड़वत तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल नगण्यता की स्थिति में उसको कर दिया जाएगा। और वही स्थिति यहां देखा जा रहा है कि इंद्र जो मारने की दृष्टि से इतना सेवा किए माता दीति का, आगे वो कथा आएगी, उन्होंने क्षमा याचना किया मां दीति के साथ कि मैंने इतनी दृढ़ता के साथ आपकी सेवा किया लेकिन मेरा भाव कुछ और था। क्योंकि दीति मां ने कसम जैसा खिला करके उनसे पूछी इंद्र से कि सच बताओ कि जो ये यहां 49 मैं तो एक पुत्र के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही थी, लेकिन ये 49 हो गए तो ये कौन है और कैसे हुए सच बताना। तो इंद्र ने जो कर्म किए थे वो सारे बता दिए हमें कि मैंने आपके इस पुंसवन व्रत में त्रुटि होने के कारण अपना अवसर पाते ही मैं गर्भ में प्रवेश किया और उस सोने जैसे चमकते हुए गर्भ को मैंने 7 टुकड़ा किया और 7 टुकड़ा करने के बाद वो बच्चे रोने लगे। मां रुति है, मां शब्द अलग है और रुति अलग है, मतलब मना करने की स्थिति में कि मत रो मत, इंद्र मना कर रहे हैं। वो बताए कि जब रोने लगे तो मैंने फिर उनको काटा, 7-7 टुकड़े किया और पुंसवन व्रत करने के कारण इतनी इनके अंदर अमरता की स्थिति आ गई थी कि उसके बावजूद भी ये मरे नहीं और वही तुम्हारे समक्ष हैं। अरे मेरे कारण 1 से 7 हुए, 7 से 49 हुए और एक मैं सामने हूं, 50 इकट्ठे हैं आपके सामने। और उन्होंने बताया कि मैंने इनको ईर्ष्या के कारण अपने को अमर बनाने के लिए मैंने इस प्रकार की प्रवृत्ति किया। तब मां भी वहां आशीर्वाद देती है, आगे ये सब श्लोक आने वाला है, कथाएं आने वाली है। इंद्र ने अपने हृदय की साफ साफ गलतियां बता दिया कि मैंने इस प्रवृत्ति से ये किया, तो मां दीति ने भी उसे आशीर्वाद दिया। और व्रत के कारण ही मुख्य रूप से इन कथाओं में अब बात आया है कि व्रत करने के कारण ही जो स्थितियां सही करने के लिए बताया गया था वो ठीक उल्टा हुई। मारने की स्थिति में उसके भाई बन गए, मित्र बन गए। इंद्र का एक नाम आया है पिछले अध्याय में, शायद शुक्र, शुक्रदा ऐसा कोई शब्द है, शुक्र शुक्र है, शक्र शक्र या शुक्र आया है सब इंद्र के लिए, क्योंकि ईर्ष्या की स्थिति में इन्होंने ऐसा किया। लेकिन ठीक अब वो स्थिति यहां प्रश्न उठा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, राजा अरे राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न उठा रहे हैं कि इनकी प्रवृत्ति तो सही नहीं थी, लेकिन मां आसुरीन थी, लेकिन फिर भी ये दैवत्व को कैसे प्राप्त किया, इनके अंदर इस प्रकार की विचित्र गुण कैसे आ गए। तो इसके उत्तर में इस श्लोक के अंदर भी अगर देखा जाए तो अभी उत्तर नहीं मिला है। इस श्लोक में भी अगर देखा जाए तो उत्तर नहीं मिला है कि क्यों वो देवता बने। अभी तो इन प्रश्न पूछे दो श्लोक में परीक्षित महाराज, तो अभी तो प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रश्न की प्रश्न का अनुमोदन करते हुए अभी प्रशंसा ही कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर भी कि आपने अति संक्षिप्त स्थिति में आपने बहुत मतलब गूढ़ विषय की चर्चा आपने किया है, आपका प्रशंसा आपका जो प्रश्न है वो प्रशंसनीय है। अब आगे सारी कथाएं विस्तार होगी, लेकिन बात यह यहां उठता है कि हम लोग जो गीता भागवत या अन्य शास्त्र पढ़ते हैं सब प्रश्न पर आधारित है। भागवत में भी बताया गया कि 6 प्रश्न का उत्तर देने में भी 12 स्कंद बोला गया है, और गीता भी हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू में ही धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से कि क्या हो रहा है, तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए 18 अध्याय बोला गया। और वही चीज केवल प्रश्न पे प्रश्न उठा करके एक कथा विस्तारित भागवत में बताया जाता है। प्रश्न उठ रहा है तो प्रश्न का उत्तर देने भी कथाएं निकल रही, कथा के साथ साथ सिद्धांत भी निकल रहे हैं। तो यहां सुत गोस्वामी पहले हम लोग राजा परीक्षित के प्रश्न को पढ़े कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न क्या किया, उसके बाद उत्तर सुनने को बाद में मिलेगा। श्लोक नंबर 20 में ऐसे श्लोक का संबंध 19 से भी है तो पढ़ लें, 19 का भी अनुवाद पढ़ रहे हैं कि दीति के गर्भ से 49 मरुत देव उत्पन्न हुए, इनमें से किसी के संतान नहीं हुए, क्योंकि सबके वंशों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए तो इनके भी वंश का वर्णन करें कि ये 49 तो हुए लेकिन इनका कोई वंश नहीं हुआ, इनकी कोई संतानें नहीं हुई। यद्यपि दीति ने उन्हें जन्मा था किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया। लास्ट वाले शब्द से यह झलकता है कि इंद्र की कृपा से, अगर इस प्रकार की वैर भावना, अगर इंद्र नहीं ठाने होते इसको मारने के लिए, इनको मारने के लिए, तो ये दैव भाव को शायद प्राप्त नहीं किए होते। इसलिए इंद्र की वर्चस्व यहां दी जा रही है। अब प्रश्न उठा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित कि कथम तम आसुरम भावम पौहत्यक पतिकम गुरो इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधुम कृतम हिते। राजा परीक्षित ने कहा कि हे स्वामी, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे, मतलब आसुरी प्रवृत्तियां उनके अंदर होंगी जन्म के समय, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? जब आसुरी थे, आसुरी प्रवृत्ति थी, तो उन्होंने देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किया था? दो प्रश्न, देवता क्यों बनाए और बने भी तो क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया था? श्लोक नंबर 21, इमे श्रद्धते ब्राह्मण ऋषयो ही मया सह परिज्ञानाय भगवान स्तन्न व्याख्या तुम अरहसि, व्याख्या तुम अरहसि। राजा परीक्षित जी यह कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, केवल मैं ही नहीं जानना चाहता हूं इस बात को, ये ब्रह्म ऋषय शब्द आया है कि ये ब्राह्मण जो ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण और ऋषि हैं, ये लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि इंद्र ने इनको देवता पद कैसे दिया, कैसे देव बना दिया, इनकी प्रवृत्ति को कैसे बदल दिया। तो इधर मौसी और बेटे दोनों को, दोनों की हुई जो भक्ति है उसका प्रभाव इन दोनों के, इन बच्चों के ऊपर पड़ा है, किसी एक को नहीं, लेकिन खास करके बैर भाव जिसका ज्यादा था। मां को भी देखा जाए तो शुरू में इंद्र के प्रति स्थिति थी कि नहीं, मैं इंद्र को मारूंगी तब शांति लूंगी, आगे के श्लोकों में आएगा, मैं भी ऐसा व्रत करना चाहती हूं जिससे इंद्र अपने को समर्थ समझता है, तो मैं इसको मरवा लूंगी तभी शांति प्राप्त करूंगी। और इंद्र का भी यही प्रतिज्ञा था कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं पैदा होने से पहले मैं मारू, उसका भी एक प्रतिज्ञा था। और दोनों अपने अपने तरफ से दोनों तपस्या कर रहे हैं, सेवा से प्रसन्न करके कोई किसी को वश में कर सकता है। कई श्लोकों में संकेत किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने कि दीति ने इतना कश्यप जी का सेवा किया कि उन्होंने उनको वश में कर लिया। तो इन श्लोकों से, इन स्थितियों से यह हमें संकेत मिलता है कि अगर जब हम संसारिक चीज प्राप्त करने के लिए हमें इतनी खुशामद करनी पड़ती है तो भगवान को खुश करने के लिए कितना सेवा करना पड़ेगा। मुख्य अर्थ यह निकलता है कि सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, चाहे हम उनको कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बनाना चाहे भगवान बन जाएंगे अपने भक्तों के लिए। प्रश्न उठा रहे हैं परीक्षित जी की, हे रावण श्रेष्ठ, मैं तथा यहां पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक हैं, अतः परम आत्मा हमसे इसका कारण बताएं। तब यह जो कथा प्रसंग सूत गोस्वामी और सोनक आदि ऋषियों से चल रहा है, वही यहां सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के संदर्भ में चल रहा है। तो सुत गोस्वामी ने कहा कि हे साधु सोनक, महाराज परीक्षित सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्नों की प्रशंसा की। हिंदी में प्रयत्नों क्या लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ तो कौन प्रयत्न है, कौन सा पूछे, प्रश्न तो पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि आगे ही इसी लाइन में लिखा हुआ है कि जब प्रशंसा की, जब प्रश्न की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया, जब उन्होंने प्रश्न किया होगा तभी तो उन्होंने उत्तर दिया होगा। तो इस श्लोक के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें समझना चाहिए। विष्णु रथ किसका नाम है, परीक्षित महाराज का क्यों नाम पड़ा, विष्णु रथ परीक्षित महाराज का नाम क्यों पड़ा, बादरायणी वेदव्यास जी के पुत्र होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को कहा गया। वैसे ही दोनों का नाम आया है, शिष्य और गुरु दोनों का नाम इस श्लोक के अंदर है। विष्णु रथ का अर्थ यह है कि जिनको भगवान विष्णु ने अंधेरे की स्थिति में उन्हें दर्शन दिया था, अर्थात जब राजा परीक्षित गर्भ में थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो दो नाम उनके पड़े, परीक्षित जिन्होंने गर्भ में जिस परम पुरुष को देखा था उनकी ही वो बाहर आने के बाद इच्छा किए, तो परीक्षित बने, मतलब उनका नाम उस समय परीक्षित हुआ। लेकिन जैसे ही गर्भ के अंदर अंधेरा है, वहां की स्थिति ऐसी बताई गई कि वहां कुछ दिखता नहीं, वहां कोई प्रकाश नहीं, कुछ नहीं, और इतनी कंजेस्टेड स्थिति होती है, उस स्थिति में भगवान ने वहां उनको प्रकाशमान दर्शन दिए। तब उस समय परीक्षित महाराज का नाम विष्णु रथ पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें वहां दर्शन दिया। और इसके अंदर शब्द यह है कि निशम्य आदृतम अल्पम अर्थवत्, बताइए कि थोड़े से जैसे संक्षेपण होता है कि दो चार लाइन का जो अर्थ है वो एक लाइन में ही लिखने का प्रयास किया जाता है, तो आदर के साथ इन प्रश्नों का आदर करते हुए इन गूढ़ रहस्यों का वर्णन करने के लिए परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि बताइए। सभाजन संवृते न, क्योंकि हम लोग सम्मिलित रूप से सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज का कहने का आशय यह था केवल मैं अकेले ही नहीं जानना चाह रहा हूं, ब्रह्मऋषि भी जानना चाह रहे, और जब तक जानने की अगर इच्छा न हो, भागवत का प्रथम स्कंद पढ़िए तो उसके अंदर श्रोता का भी संकेत किया गया है कि श्रोता की उत्सुकता को देख करके वक्ता अच्छा बोल सकता है, नहीं, कितना भी अच्छा वक्ता हो, सुनने वाले कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, उनकी मतलब सुनने की जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं है, तो वक्ता कितना भी प्रयास करेगा कि अच्छा से अच्छा हम इसको समझाने का प्रयास करें और समझ जाए, तो कथा भी वक्ता बोल नहीं पाएगा ठीक से। इसीलिए तो श्रोताओं का वर्णन हुआ है महात्म्य के अंदर, अवर और प्रवर, कई पक्षियों का उदाहरण दिया हुआ है कि जब तक सुनने की प्रवृत्ति न हो, जिज्ञासा न हो, तब तक वक्ता किसी को कुछ चाहे भी तो ठीक से उसको समझाएगा, समझा नहीं पाएगा। अब इन्हीं प्रसंगों को, भागवत के प्रसंगों को लीजिए कि परीक्षित महाराज पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, कैसे सात दिन और कैसे सात रात बीत गया बिना खाए पिए, परीक्षित महाराज को कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए तो इसको भागवत को रस आलयम कहा गया कि ये रस का भंडार है। और प्रथम अध्याय के अंदर ही बता दिया गया कि जक्षिणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये रस ऐसा है कि जो इस रस का आस्वादन करते जाता है तो पग पग पर नए रस की अनुभूति होती है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ भावना जगती जाती है। उस स्थिति से प्रश्न का अनुमोदन करके अथवा प्रश्न की प्रशंसा करते हुए तब एक कथा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है, पढ़ता है, वही कुछ पूछ सकता है। प्रभु जी मुझे संकट चैलेंज की स्थिति से नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, उस स्थिति से प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरे महाराज जब सत्ता वगैरह करते हैं तो कोई अगर प्रसंग में कोई प्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो उत्तर देते हैं, नहीं तो महाराज कह देते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है। क्योंकि प्रसंग में प्रश्न अगर आए तो पूछे हैं तो श्रोता की भी और उत्सुकता बढ़ती है, नहीं कथा कुछ और चल रहा है, प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, तो वक्ता का भी डिवाइडेड माइंड होता है, उसका भी दिमाग बढ़ जाता है, कहां से प्रश्न आ गया इसके दिमाग। प्रश्न की प्रशंसा करने का मतलब यह है कि यह अनुसंगिक मतलब प्रासंगिक प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न जानने से हमारी भलाई हो सकती है, आगे हमारी रक्षा हो सकती है। इस पूरे अध्याय का ही अर्थ है, अगर पढ़ करके देखेंगे इस कथा को, तो केवल दीति के कठिनाई का वर्णन किया गया कि कितनी कठोर तपस्या की वो अपने ही संतान को मारने के लिए। इसी अध्याय के अंदर माताओं की बहुत कठिन निंदा की गई है और उनको इतना कठोर बताया गया है कि मत पूछिए, भाई को मार सकती हैं, अपने पति को मार सकती हैं, अपने सगे संबंधी को, प्रिय से प्रिय संबंधी को मार सकते हैं। कश्यप जी जब वर में बंध गए, जब वरदान दे दिए तब उनकी दिमाग खुली, तब कह रहे हैं दीति के प्रति कि वो मैं तो बंध गया वचन दे करके। शरद पत्योत्सव वक्त्रम वच्चश्च श्रवणामृतम हृदयंतश्च क्षूरधारा भी, बोलती तो इतनी प्रेम पूर्वक है और इतनी मीठा मीठा बोलती हैं, लेकिन इनका हृदय तीखी क्षूरे धार से भी तेज है। ध्यान्यर्थे मतलब धन और अर्थ की प्राप्ति के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए अपने भाई, अपने पिता और अपने पुत्र को भी मार सकते हैं, इतना तक आ गया है इसी अध्याय के अंदर। इसलिए मूल अर्थ यह है कि प्रवृत्ति उनकी कुछ और थी, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से दोनों की प्रवृत्तियां ठीक आ गई, अपने रास्ते पर आ गई, कि दोनों फिर अच्छे रास्ते को, भाई भाई में प्रेम भी हो गया इंद्र उन्हीं 49 भाइयों को लेकर के साथ में गए और वार्तालाप हुआ। जब शुरू में वही उसी इंद्र को जब जिस गर्भ का वो छेदन कर रहे थे तो छोटे बच्चे कह रहे थे कि भैया हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो, तो उस समय इंद्र नहीं सुना, क्योंकि अपनी स्वार्थ से व्यक्ति अंधा हो जाता है। उस समय नहीं सुना, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगा लिया। जब वो नहीं मरे तो स्वयं अपने आप हार गया कि वो नहीं, इनकी जीत है। मां का जो पक्ष है, मौसी का जो पक्ष है, जो तपस्या है वो ज्यादा है। इसलिए क्योंकि भक्ति पक्ष, चाहे हम लोग किसी भी स्थिति से इस्कॉन में ज्वाइन किए, हम लोग देखते हैं कि कितने भक्त ऐसे होते हैं अन्य इच्छाओं को लेकर के इस्कॉन के अंदर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर ठीक से भक्ति के साधनों को पालन करते हैं तो बहुत जल्दी उनके अंदर बदलाव होता है। भगवान ने कह दिया भागवत के अंदर पहले ही, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तिब्रेण भक्ति योगे न जजे तो पुरुष परम। चाहे जिस भाव से आया, संसार चाहिए और कुछ चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, कुछ भी चाहिए, भगवान कहते आया तो मेरे पास। अब उनको पता है कि इसको क्या देना है, बदल देते हैं, ऐसा मिला करके देते हैं दवा भगवान कि वो रोग ही उसका खत्म हो जाता है। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में देखिए, भगवान नरसिंह देव बार बार कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा भैया मैं बनिया का बच्चा नहीं हूं, मुझसे मांगने के लिए क्यों कर रहे। ध्रुव महाराज की स्थिति में वही देखिए, उनकी भावना शुरू में क्या थी, लेकिन बदल गए। अगर ठीक से भक्ति के साधनों का अगर हम पालन करेंगे तो, क्योंकि यह अर्थ ही है कि देखिए कितनी बैर भावना है दोनों तरफ से, मौसी और बेटे में, बहन के लड़के में कितना बैर भावना है दूसरे के प्रति, लेकिन दोनों फिर सीधे हो गए। भक्ति ऐसी स्थिति है कि भुला देती है। महाप्रभु के लीला को पढ़िए, महाप्रभु जब झारखंड में जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, तो एक जीव जो दूसरे को खाने वाले हैं सब एक साथ होकर के कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, क्योंकि बैर भाव को भुला देता है भक्ति। यह नहीं कि यहां आने के बाद भी ऐसे नजर से देखो भक्तों को कि लगता है खा जाओ, वो दृष्टि बदलो, देखने की दृष्टि को बदलो। इसलिए एक नीतिकार ने एक श्लोक में लिखा है कि साधुओं के संग में 100 वर्ष कोई खाता है, 100 वर्ष सोता है, 100 वर्ष उसके साथ उठता बैठता है, तब भी नहीं जान पाता कि साधु क्या करना चाहता है। ये क्या करना चाहते हैं तब भी नहीं जान पाता, क्योंकि 300 साल उसने गंवाया उसके साथ, फिर भी नहीं पता चला। इतनी ऊंची स्थिति होती है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे भगवान को भी अपने बस में कर लेते हैं। भक्ति के बल एक ही साधन है, बस एक ही ऐसी चीज है जिसमें वो भगवान को भी बांधते हैं। भगवान को ऐसे ही अजित कहा गया है कि जो उसको कोई भी अजितोपी कोई भी जीत नहीं सकता है, लेकिन भगवान जीते जाते हैं भक्ति के कारण, सेवा के कारण जीत लिए जाते हैं। इसके अंदर कोई कथा नहीं है, लेकिन कथा के आगे आएगी, लेकिन इन श्लोकों से यह संकेत मिलता है कि हमें व्रत और तपस्या करनी चाहिए तो गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और अगर ऐसे वैष्णव व्रत जो किया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का जो व्रत किया जाता है, उसका अर्थ ही यही होता है कि हम गुरु और भगवान को प्रसन्न करके हम अपनी सही स्थिति को प्राप्त करें। अब इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की। यहां तात्पर्य से भी प्रभु जी अगर संकेत होता है तो यहां प्रश्न ही निकलता है। प्रयत्न है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी यहां यही लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की। संक्षेप होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था, जिज्ञासाओं से पूर्ण था, क्योंकि जानने की स्थिति यह थी कि भाई जब असुर मां से जन्म हुए तो इन्हें असुर बनना चाहिए, लेकिन ये देवता कैसे बन गए, इस स्थिति को जानने के लिए जब जिज्ञासा किए हैं तब उस प्रश्न की प्रशंसा की जा रही है कि भाई जब जानने की इतनी बड़ी अभिलाषा है तो सुखदेव गोस्वामी भी सुनाने की इतनी बड़ी अभिलाषा रखते हैं कि नहीं सुनाऊंगा जरूर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दीति ईर्ष्या से पूर्ण थी किंतु उसका हृदय भक्ति से शुद्ध हो सका। कितना भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, लेकिन अगर भक्ति ठीक से करेगा तो सुधरेगा। कुछ बाकी भी रह जाएगा तो भगवान का बात झूठा नहीं होगा, फिर ऐसे घर में जन्म देंगे, अधूरी स्थिति पूरा करके फिर उनको प्राप्त करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे, देखिए प्रभुपाद जी कहां कहां डूबते हैं तात्पर्य को पढ़ने के बाद पता चलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्म चेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे सुंदरी पत्नी के वश में थे, चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा इसलिए सुखदेव गोस्वामी परम प्रसन्न हुए। अब तब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने क्या राजा परीक्षित को उत्तर दिए हैं अभी शुरू होगा, अभी पूर्ण रूप से उन प्रश्नों का उत्तर भी अभी एक दो श्लोक में नहीं मिलेगा। अब प्रश्न तक ही रहने दीजिए कि दैत्य से पैदा हुए अर्थात दीति से पैदा हुए फिर भी इनकी स्थिति दैत्य क्यों बन गई, तो इतना ही जानिए कि इंद्र की भक्ति से और मां के पुंसवन व्रत से, दोनों की सम्मिलित स्थितियों से, दोनों की जो विपरीत स्थितियां थी वो सम्मिलित हो गई, एक में मिल गई, अर्थात एक रास्ते पर चलने वाले बन गए। यही है, अब इन प्रश्नों का उत्तर आगे आएगा। हरे कृष्ण। कोई सुझाव, कोई प्रश्न आप बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न करने वाला भी या प्रश्न का उत्तर देने वाला दोनों बाकी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, पर एक मेरे काम में जो आपने कहा था मतलब औरत किस हद तक जा सकती है, उसने अपने संपत्ति के लिए, पिता की संपत्ति के लिए अपने भाई भतीजे बैठ सबको साथ को मार दिया। अब राष्ट्रपति के पास दया जी का पड़ी है उसकी कि उसको फांसी का ऑर्डर हो चुका है। ये मेरे गांव की घटना है कि एक लड़की ने संपत्ति पाने के लिए अपने बाप को, भाई को, उनके बच्चे भतीजा भतीजी सबको मार दिया बंदूक से।
जी ये आपके ही गांव की नहीं, ये गांव गांव की स्थिति अभी है। और ये अगर और गहराई से देखा जाए तो ये घर घर की स्थितियां है। सच जो गृहस्थ होंगे अपने हृदय पर हाथ रख करके भगवान यहां वास करते हैं कि एक पति एक पत्नी को कितना खुश करना चाहता है, कितना कपट करता है, झूठ बोलता है, पत्नी कितनी कपट करती है और पति कितना कपट करता है अपने आप पता चलता है। कहीं ना कहीं उनका संक्षिप्त सूक्ष्म रूप से उनका स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। और ये भागवत का भागवत निंदा करने वाला ग्रंथ नहीं है। यही कथा जब पुरुरवा महाराज की कथा महाराज कह रहे थे, चाहे इस प्रकार की कथा मेरे महाराज भागवत सप्ताह करते तो कितने लोग प्रश्न रहते महाराज स्त्रियों का क्यों निंदा करता है। महाराज ने कहा कि मैं क्षमा करना आप लोग, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं भागवत बोल रहा हूं, मैं किसी का मतलब कोई हमारा यहां दुश्मन नहीं है कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं। लेकिन क्यों कहा गया, खास करके स्त्रियों का ही नाम क्यों दिया गया? और सिद्धांतता देखा जाता है कि अगर सांप और बिच्छू अगर अपने बच्चों को नहीं खाएं तो उनका विष और नहीं बढ़ेगा, उनका विष और बढ़ता है अपने संतानों को खाने के बाद ही, क्योंकि एक दिन में बिच्छू हजार बच्चा हजार अंडा दे सकता है, और जैसे बच्चे निकलते हैं तो प्रसूति के बाद इतना जोर से भूख लगता है कि बिच्छू अपने बच्चे को ही खा जाते हैं, सांप अपने बच्चे को ही खा जाते हैं, जो इधर उधर छटक करके भाग जाते हैं वही बचे रहते हैं, नहीं तो भर जाए पृथ्वी सांप और बिच्छुओं से। और आज की स्थिति देख ही रहे हैं, जब अपने विष को बढ़ाना है, अपनी स्थितियों को बढ़ाना है, तो मां क्या नहीं कर रही है, बाप क्या नहीं कर रहा है, सारी स्थितियों को हम लोग बिगाड़ रहे हैं। अरे घर घर की कथा है, भगवान न करें सब किसी को सुनने को और इसमें शामिल होने को मिले, लेकिन प्रार्थना करने गए हम लोग भक्ति पद से भगवान के चरणों में अगर नतमस्तक होंगे तो पता चलेगा कि नहीं यार हम लोग क्या करने के लिए यहां है, क्या यहां ईर्ष्या से सबको आग की तरह हम सबसे जलने के लिए आए हैं, या हम शांति से अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं? तो हम लोग क्या प्रार्थना, गुरु महाराज लोगों से तो यही प्रतिदिन कह रहे हैं कि संसार दावा नलनी ढलोकम, संसार में आग लगी हुई है, गुरु महाराज बचाओ। कहीं शांति नहीं है, यहां भगवान के चरणों के अलावा कहीं किसी को शांति नहीं है। प्रार्थना हम उस स्थिति से तो करें, और प्रार्थना करेंगे तो भगवान इतने दयालु हैं कि हम भले ठीक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके कान में अगर कातरता की भाव से अगर हमारा आवाज गया तो भगवान जरूर आ जाएंगे, जरूर रक्षा करेंगे। लेकिन पात्र बने हम लोग, ईर्ष्या और सारी संसारिकताओं का महत्व कम करते हुए भक्ति का महत्व ज्यादा है, अन्यथा अगर कोई भी बहुत बढ़िया पाक व्यक्ति हो, पकवान बनाने वाला, खूब काजू किशमिश बादाम डाल करके अच्छा से खीर बनाए और लास्ट में एक मुठा रेता डाल दे, इतना टेस्ट हो जाएगा उसका। अगर हम लोग इतने दिनों के बाद भी अगर इन सब चीजों का विचार नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में अमल नहीं कर पाएंगे, ये अमल कर पाएंगे तभी हम गुरु और साधुओं की कृपा होगी तब, और प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुधर जाएंगे। प्रार्थना ही नहीं करेंगे, अहंकार में भगवान से भी मुंह फुलाए रहेंगे, शास्त्रों को भी नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तब तो हम जहां के हैं वही उल्टी दिशा में चलेंगे। कितनी भी किसी की भी बिगड़ी हुई स्थिति हो, लेकिन अगर भगवान से प्रार्थना करता है नित्य प्रतिदिन, किसी भी त्रुटि की स्थिति में, तो भी एक न दिन एक न एक दिन ऐसा आएगा वो सही रास्ते को पकड़ देगा। पदम पदम यदि विपदाम न थे सब, इस श्लोक का अगर टीका पढ़ेंगे तो उसमें आया कि हम लोग कब फ्री है, हम लोगों के जीवन में केवल विपत्ति है, कभी हम फ्री नहीं है, कदम कदम पर विपदा है, लेकिन हम सब विपदाओं से बच जाएंगे, केवल मुकुंद की शरण में जाने से इन कदम कदम की विपदाओं से हम अपने आप को छुड़ा लेंगे। इसलिए भगवान से प्रभुपाद से प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य को आप ही पूर्ति करा सकते हैं हमसे, और गुरु लोगों से भी हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज जिस स्थिति से आपने प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त किया वो कृपा की याचना मैं कर रहा हूं, लेकिन उसको पूरा आप ही कर सकते हैं, शायद हम उसके योग्य ना हो, लेकिन आप इतने बड़े कृपा सिंधु हैं कि आप हमें उसी स्थिति को प्राप्त करा देंगे। अगर इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, जो हम लोग गुरु पूजा करते हैं उसमें क्या गाते हैं, आर ना करी है आस, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया वही वाक्य हमारे लिए सब कुछ है और किसी चीज की आशा नहीं है। एक ही आशा है कि प्रभुपाद की सेवा करने में हम लोग सक्षम हो पाए, इन शास्त्रों को समझ पाए, इन कथाओं को जिस ढंग से शास्त्र में रखा गया है हम लोगों को सुधारने के लिए, तो हम सुधर सकें, प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, उपस्थित भक्त वृंद की, गौर हरि प्रेमानंद।